अगला पारा रूबा माँ है। लफ्ज़ रूबा माँ, एक वक्त आएगा, वंस अपॉन अ टाइम जिसको आप कहते हैं अरबी ज़बान में, ये जुमला है। थोड़ा सा पारे का तारुफ लेते हैं। लफ्ज़ रूबा माँ शुरू में ही आ रहा है पारे के। इस पारे में अजमत सहाबा के नाते से जो हम थीम देखेंगे वो है शिकायात से ऊपर उठकर सोचना। ये क्या है? इस पूरे पारे में एक तो हम सूरत हिजर करेंगे और दूसरी सूरत नाहल। दोनों को जब जमा करेंगे, आपने आप ही से नोट करते जाना है, जैसे पिछले पारे में दरख्त की तरह बढ़ना था ना, इस पारे में टीम वर्क है। आप इसमें शहद की मक्खी को देखेंगे, इसमें गाय के दूध देने को देखेंगे, इसमें बादलों के बनने को देखेंगे। मैं नोट कराऊंगी जहाँ तक होगा, बाकी आप खुद ही देखिएगा। लेकिन इस सब प्रोसेस को कामयाबी तक करने में जो एक चीज़ है वो क्या है? शिकायत से ऊपर उठकर सोचना। बारिश नहीं हो सकती अगर ज़मीन से उठने वाले पानी जो समंदरों के अंदर से निकलता है उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें आईं, ज़रा सोचिए, पानी क्या है? H2O, भाप बनता है, ऊपर उड़ता है। पानी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें नमकियात, सॉल्ट्स। जब समंदर से पानी ऊपर जाता है तो नमक किधर रह जाता है? नीचे। नमक ने कभी शिकायत की? देखो जी, मैं इसमें थी, खुद ऊपर चले गए, मुझे ज़मीन पे छोड़ दिया। वही काम करेगा जो शिकायत से ऊपर उठेगा। टीम वर्क, सहाबा कराम की ये खूबी है। अभी आपको मिसालें भी दूंगी बीच में। इतना कुछ है कि बस हर पारे पे यही दुआएं करती हूँ, अल्लाह कुछ करवा दे इस पे काम मुझसे। शिकायत से ऊपर उठकर चले थे। शिकवे, शिकायतें, गिले, मैं नहीं कर सकती, मेरे से कैसे होगा। पीछे आपको किस्सा सुनाया था खालिद बिन वलीद का, बहुत बहादुर थे, गैर मामूली फ़ौजी काबिलियत थी। अल्लाह के नबी से लेकर अबू बकर की खिलाफत तक मुसलसल वो लीडर रहे थे, इस्लामी फ़ौज के सरदार। लेकिन हज़रत उमर ने इनको इनकी बाज़ादात और लोगों के कुछ अकायद के बिगाड़ की वजह से सरदारी के अहदे से उठाकर एक आम फ़ौजी के अहदे पर डाल दिया। अबू बकर को मशवरा देते थे लेकिन अबू बकर ने कहा नहीं, इससे ख़तरा होगा, ये बहुत काम के बंदे हैं, इस्लाम को इससे फ़ायदा होता है। खैर, हज़रत उमर जब ख़ुद खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत खालिद को सरदारी से माजूल किया और एक आम सिपाही की हैसियत दी। ये वो वक्त था कि हज़रत खालिद मुल्क शाम में गए हुए थे, फतुखात के झंडे काट रहे थे, कारनामों पे कारनामे थे। अब एक बंदा पीक पे है, मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको समझिए, पीक पे। ये भी नहीं कि अब उससे काम नहीं हो रहा, कमज़ोर है, तलवार टूट गई, हिम्मत नहीं। ही वॉज फेमस, बहुत सारे लोग उसके साथ थे जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया, लाइक्स थे बड़े। इतने में एक पैगाम जाता है कि खालिद बिन वलीद साहब, आप इधर से उतर कर इधर आ जाइए, और अबू उबैदा बिन जरा जो एक आम बंदे थे उन्हें कहा आप आके इधर आ जाए, चलिए इसी पे ले लें, आपको कहा जाए इधर आ जाए और मुझे कहा जाए उधर आ जाए। मुझे क्या करना है? अल्लाह तेरा शुक्र, आम हालात में शुक्र नहीं करते। हम कहते मेरी कुर्सी छीन ली। अब जब अबू उबैदा बिन जराह को इनकी जगह बड़ा बना दिया गया तो जो साथी थे ना, हर एक के साथ कुछ साथी होते हैं, कुछ लोग खालिद बिन वलीद के खैमे में आते हैं, कहते हैं अकेले में बात करेंगे, सब में नीति कर सकती? नहीं नहीं, सब में कैसे कर सकते, ये है वो। कहा क्या हुआ है, क्या बात है भाई, क्यों आए हो? कहते हैं आपके साथ क्या हुआ है, कल तक तो इधर थे अब आप उधर आ गए, आप फिक्र नहीं करें, आप आगे चले। इनको प्रवोक किया, क्या हम आपके साथ हैं, आप खलीफा का हुक्मनामा नहीं, इनकार कर दीजिए। लेकिन आपको तो खालिद बिन वलीद ने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा कि बड़ी मोहब्बत से आप आएँ, बड़ी इज्जत से जाइए, और कहा कि मैं उमर के लिए नहीं लड़ता था बल्कि मैं रब्बे उमर के लिए लड़ता था, इन्नी ला उकातिलु फी सबीली उमर वलाकिन उकातिलु फी सबीली रब्बी उमर। क्या हुआ, वो पहले लश्कर के सरदार की हैसियत से लड़ते थे और अब एक मातहत फौजी की हैसियत से लड़ने लगे। ये है आज के बारे में। ऐसा खूबसूरत किरदार सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है जब एक बंदा इतना ऊंचा हो जाए कि वो शिकायतों और तलखियों से ऊपर उठकर सोचे, और इसका रवैया, इसका रद्द अमल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो, मनफी जेन ना हो, मुस्बत सोचो। वो अल्लाह के लिए जीने वाला हो, बंदों की बातों में जीने वाला ना हो। और पूरी कायनात इसी असूल पे चल रही है। शहद की मक्खियाँ कभी गिला नहीं करेंगी कि आप मलका बन के बैठ गई, हुक्म देती रहती हैं हमें, और वो कि चलो वर्कर्स इधर आओ काम करो। नो, सभी ने पढ़ी हुई है वो आयतें, कोई नई थोड़ी है। और बादल, ये क्या बात है जी, आप तो ऊपर सहरे कर रहे हैं और हमें काम पे डाल दिया। नफ़ा मंदी का जिक्र हमने पिछले पारे में भी पढ़ा है, वम्मा मा यन्फो नासु फयम्कुस, सूरत रात की शायद 12-13 नंबर आयत थी, वही याद कर लीजिए। अगर आप नफ़ा देना चाहते हैं तो आपको शिकायतों से ऊपर उठना पड़ेगा। शिकायतें हर जगह होती हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं और कुछ शिकायतों को दबा देते हैं। आप देखिए कि शिकायत को इतना ऊपर ले जाएं कि वो अल्लाह के दरबार में पहुंचे। आपको कभी भी किसी बंदे से होगी, माँ को बेटी से होगी, आपको पता है माँ बच्चे की लड़ाइयाँ नहीं कभी देखी दूध पीने पे जो हो रही होती हैं। आप बच्चे को इतना दूध पिला रहे हैं कि इसके दांत निकलें, कैल्शियम से दांत निकलते हैं, और उस दांत के निकलते ही सबसे पहले वो आपको काटता है। जी, फितरत का असूल है। आप जिनको बोलना सिखाते हैं ना, कल वो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं। जिनको आप अल्लाह से जोड़ते हैं ना, कभी कभी वो लोगों को आपसे काटते हैं, कभी खुल के कभी ना खुल के लोगों को इनका ना ही पता चले, फिर तो हमसे सुनेंगे ही नहीं, हमारी तो बात ही नहीं मानेंगे, तो अपने मामलात को अल्लाह के सपोर्ट करते हैं। आपने कभी शाहीन और सांप की लड़ाई देखी है? ईगल तो शिकार होता है। अब शाहीन जब शिकार करता है ना सांप का, तो मैदान जंग बदल जाता है। अगर सांप ज़मीन पे हो तो शाहीन, परिंदा, ईगल, उकाब, आपको कहते हैं कि शाहीन उस सांप को ज़मीन पे अगर आके लड़ेगा ना, तो सांप जीत जाएगा, क्योंकि सांप ताकतवर भी है, जहरीला भी है, और ज़मीन पे वो कुचली मार मार के लड़ने का माहिर है। कभी भी मुकाबला होगा ना, तो शाहीन पता क्या करता है, उसकी दुम से पकड़ के उसके ऊपर आसमानों पे ले जाता है, उसको बहुत ऊपर ले जा कर ना छोड़ देता है। अब जब सांप ऊपर जाता है ना, तो हवा में उसका तवाज़ुन जो होता है ना, वो बरकरार नहीं रहता, वो डोलता है ना, उसको हवा में उड़ने का पता ना, उसके पर ना कुछ, ना ताकत ना महारत। अब जब वो बेसुध हो जाता है ना, तो सांप वहाँ जाके कमज़ोर होता है, तो शाहीन बड़ी जल्दी से उसका मुकाबला करता है, उसका शिकार कर लेता है। ज़िंदगी में ये जो शिकायतों के सांप है ना, और अगर खुदा ना खास्ता आपको किसी जगह सामना भी है, और किसी टीम वर्क में स्पेशली, और किसी बड़े काम में और बड़े मिशन में, रदी अल्लाह अन्हु वाले में, या अमर बिल मारूफ या दीन के काम में है ना, तो वल्लाही शिकायतों के ये सांप ज़मीन पे नहीं, ऊपर आसमानों पे ले जाए अल्लाह के दरबार में। ऐ मेरे मालिक, मैं अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ, फिर वो लड़ाई आपकी नहीं रहती, वो अल्लाह की और उस चीज़ की हो जाती है। आप उस ज़ात के हिसार में चले जाएंगे जिसको अल मुहैमिन कहते हैं, फिर अल्लाह आपके बिहाफ पे आता है, वो अल वकील बन जाता है, और वमा रमैता इज़ रमैता होता है। तो कभी दुश्मन से उस जगह जंग ना करें जहाँ वो आसानी से लड़ सके, हमेशा अपनी दुआओं के ज़रिए अर्श पर ले जाएं, और अल्लाह पे मान करके देखें, कभी आपको शिकस्त नहीं होगी। ये है थीम, कैसा लग रहा है? पढ़ा हुआ ये पारा पहले, जानते हैं इसके बारे में कुछ? आइए पढ़ते हैं। इसमें हमें बहुत सारे सहाबा के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस्से मिलेंगे, जिसमें नंबर एक अम्मार बिन यासिर, इनके ऊपर सूरत नहल की आयतें वहीं जाके बताऊंगी इनकी बातें, ताकि पूरा पारा ही शौक से सुने ना। फिर हज़रत खंसा का जिक्र आएगा इंशाल्लाह। फिर इस पारे में जिन सहाबा का जिक्र खैर आने वाला है, हज़रत बिलाल, सब्र और इस्तकामत का पहाड़ बने इस्लाम की कीमत पे, शुरू में आ रहा है इनका जिक्र पहली आयत पे। खुबैब बिन सैद अंसारी, हक़ के सच्चे गवाह बने, इस्लाम की कीमत चुकाई, कोड़े खाए, मारे खाई। फिर अब्दुल्ला बिन खुजाफा साहमी, ये जुल्म और सितम के सामने डट जाने वाले लोग थे, हम इस बारे में इनका तذکرہ पढ़ते रहेंगे। इस पारे की दुआओं में एक दुआ जो कर्ब की दुआ है, दुख और गम, और जब किसी से शिकायत होती है ना, बड़ा अंदर दिल दुखता है, कहते हैं हाय मेरी कदर नहीं की, हाय ये मुझे गलत समझते हैं, हाय ये मेरा जिक्र नहीं करते, हाय हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता, हम भी कुछ करते हैं, हमारे साथ तो ये मसला है वो मसला है। तो उस कर्ब के लम्हों में आपने क्या कहना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल-अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। हज़रत इब्ने अब्बास से ये रिवायत अल्लाह के नबी की मिलती है कि परेशानी में आप ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह साहिब अजमत और बुर्दबार के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अर्श अजीम का रब है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो आसमानों और ज़मीनों का रब है और अर्श अजीम का रब है। सारी शिकवे दूर हो जाएंगे, सारी शिकायतें, बंदों से क्या करना। तो एक जुमला बोल के टेक्स्ट शुरू करते हैं, शिकायतों को शुक्र में बदल दें, शिकवों को शुक्र में बदल दें। हैं ना लोग पास, काम तो कर ही रहे हैं ना, क्या मैं अकेली होती? उनकी खूबियां देखेंगे आपको खूबियां दिखेंगी, खामियां देखेंगे आप तो खामियां। सूरत हिजर की आयत 2 से 99 है, सूरत नंबर 15 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीछे हुई, अब क्या है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ़ यालमून। पहला रुकू आयत 2 से 15 तक है। कुरान हर तहरीफ से पाक है, ये इसका मेन थीम है। वो वक्त भी होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे, आप इन्हें खाता पीता नफ़ा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा? ये खुद भी जान लेंगे। कोई बस्ती, किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि उसके लिए मुकर्रर नविश्ता था, यानी लिखी हुई बात थी, रिटर्न। कोई गिरोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है और ना पीछे रहता है। उन्होंने कहा, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, यकीनन तू तो कोई दीवाना है। अब यहाँ नोट करेंगे कि बहुत छोटी छोटी आयतें, 92 आयतें मगर बहुत छोटी सी, आधी लाइन पे एक आयत है, और ये मक्की सूरतों की खूबी होती है। अगर तू सच्चा ही है तो मेरे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं और इस वक्त वो मोहलत नहीं दिए गए होते। हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हमने तो आपसे पहले अगली उम्मतों में भी रसूल बराबर भेजे और लेकिन जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते। गुनाहगारों के दिल में हम इसी तरह इसे रचा दिया करते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। और अगर हम इन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने भी लग जाएं तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू। आप देखिए कि आज हम दुनिया में किन को कामयाब कहते हैं? सहाबा को। सहाबा कराम कामयाब थे। कुरान की सूरतों में ये सूरत और इसकी इस बारे में पहली आयत बताती है कि मुसलमान ही कामयाब है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। सहाबा कराम कौन थे? मुस्लिम थे। तकलीफ़ों को सह के, कुफार के जुल्म व सितम को बर्दाश्त करके, लोग उनको हकीर समझते थे, अल्लाह ने उनको इज्जतें दी। कुफार उस दिन सहाबा के उस मुकाम को देखकर हसरत करेंगे कि हमने बिलाल को तकलीफ़ क्यों दी, हमने अम्मार को तकलीफ़ क्यों दी, हमने बीबी सुमैया को तकलीफ़ क्यों दी, हमने यासिर को तकलीफ़ क्यों दी। फिर इसके बाद आयत 3 में कुछ रवैये थे जो सहाबा को भी नापसंद थे, कि दुनिया में मगन रहना, आखरत से गाफिल रहना और झूठी और लंबी उम्मीदें बांधना। अगर हम आयत 6 से 11 में सहाबा कराम की नफ़्स सल्लम से उल्फत देखें तो आप नफ़्स सल्लम की दीवानावार पैरवी करते थे, बग़ैर सोचे समझे करते थे। अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बात करने वालों का सख्त एहतसाब करते थे, अल्लाह के नबी के पैगाम को हक समझते थे और नबी के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते थे। अगर हम भी अपने ऊपर गौर करके देखें कि आज मुसलमान नफ़्स सल्लम और इस्लाम को ऐसे समझता है। याद रखिए कि आज आपको मुझे अल्लाह ने दावते हक का काम दिया है और इंसानों को पूरी आज़ादी दी है। मुसलमान होते तो हो जाओ, नहीं होते तो ना हो। ये इम्तिहान की मुद्दत है, बहुत नाजुक है। आज किसी के ऊपर जबर नहीं, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिन अलगय, किसी के ऊपर नमाज़ पढ़ने पे बहुत पाबंदी नहीं है कि ज़रूर नमाज़ पढ़ो, नहीं पढ़ते कल पूछा जाएगा। किसी को नहीं रोका गया कि शराब नहीं पियोगे, ये नहीं कि किसी के हाथ में शराब जाके चेंज हो जाए, नहीं होगी। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह ने अपना डर और रोब डाल दिया, उसको पता लग जाएगा कि कल मैंने जो फ़ैसला किया था उसका क्या बना। सहाबा कराम की बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने नबी सल्लम के साथ हर चीज़ को लब्बैक कहा और इस किताब के ऊपर गौर व फिक्र किया। आपको मुझे अपने लिए जो अमल के नुक्ते लेने हैं, नंबर एक इताअत वाली ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीदें लगानी है, हक़ की तस्दीक करनी है, क़ुरान से मोहब्बत और इसे अपने अमल और सीने में महफूज करना है, बेजा मुतालबे नहीं करने और नबी की हर बात को हक जानना है। आगे है आयत 16 से 25, अल्लाह ही सब का राज़िक है, वलकद जल नफिस समाई बुरूजा, कायनात की बहुत सारी निशानियाँ आपको सूरत खजर में दिखेंगी, यानी बहुत साइंटिफिकल तफसीरें हैं इस सूरत की, बड़ी सिंपल सूरह है, सिर्फ कायनात पे गौर व फिक्र करते जाएं तो आप इसको समझेंगे। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है, सितारों का एक मकसद खूबसूरती, और इसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। हम अगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करें, इसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है, और ज़मीन को हमने फैला दिया और इस पर अटल पहाड़ डाल दिए, और इसमें हमने हर चीज़ एक मुअय्यन मकदार से उगा दी, और इसी में हमने तुम्हारी रोज़ियाँ बना दी, और जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो, यानी वो मखलूकात जो इनको अल्लाह रोज़ी दे रहा है बराह रास्त, और जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के ख़जाने हमारे पास हैं, और हम हर चीज़ को इसके मुकर्रर अंदाज़े से उतारते हैं। क्या बात है, आपके घर में मेहमान आने हो, बड़ी सी पार्टी है, दावत इफ्तारी है, 50-60 लोग हैं, क्या बनाऊं, कितना बनाऊं, चावल कितने बने, रोटियां कितनी मंगाएं, अच्छा गोश्त कितना, अच्छा चिकन चावल कितना, फिर भी एंड पे कुछ घट गया तो कुछ बढ़ गया। वो कुछ कहते हैं ना कि लोग पता नहीं कैसे बैलेंस लाइफ गुजारते हैं, हमारा कभी सालन बच जाता है, कभी रोटी बच जाती है, फिर सालन के बहाने रोटी और खाते हैं, फिर रोटी और लेते हैं, फिर सालन डालना पड़ता है, फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। क़यामत तक जितने लोग दुनिया में आने हैं, अल्लाह ने उन सब का रेशो प्रोपोर्शन साथ डाल दिया, साथ साथ मिल रहा है रिस्क। अगर सारे कपड़े आपको शुरू में दे दिए जाते तो आज क्या पहनते, सारा खाना बचपन में दिया जाता तब क्या मिलता, सारा दूध बचपन में मिल जाता, तो ये अल्लाह की बात है कि कायनात में बैलेंस है। और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमान से पानी बरसाकर अब तुम्हें पिलाते हैं, और तुम इसका ज़खीरा करने वाले नहीं हो। हम ये ज़िंदा करते हैं और मारते हैं, और हम ये बिलाखिर वारिस हैं, और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला और बड़े इल्म वाला है। क्या पता चला आपने, मैंने क्या करना है, पहले तो अपना अंदाज़ा दुरुस्त करना है, उतना सालन डालिए जितना उस रोटी से ख़त्म हो जाए और आप छोड़ दें खाते हुए। खैर ये तो एक बात थी, लेकिन बात यह है कि अल्लाह के तो अंदाज़े भी इतने एक्यूरेट हैं, हम तो नाप तोल के भी पानी डालें तो चावल नरम हो जाए, तो क्या पता चला। अल्लाह की कुदरतों पे गौर करना है, इस बात पे यकीन करना है कि अल्लाह ही ज़िंदगी और मौत देता है, क़यामत के दिन अल्लाह का सामना करने पर खौफ खाना है, गैब पर यकीन रखना है, किस्मतों का हाल जानने वालों को नापसंद करना है, सितारों से किस्मत मालूम नहीं करनी, और अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर उसका शुक्र अदा करना है। आगे है जी इंसान की कहानी, आपकी मेरी स्टोरी, रुकू नंबर 3, 26 से 44 है। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाल, मुखलिस बंदे कौन, यकीनन हमने इंसान को खुश्क मट्टी से और जो के सड़े हुए गारे की थी पैदा फरमाया, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खन खनाती मट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूँ तो मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा, तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने सजदा कर लिया मगर इबलीस के उसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खन खनाती मट्टी से पैदा किया। शर्म आती है ना, इस रुकू को पढ़ते हुए बहुत ही शर्म आती है। ना सोने से बनाया मैं, ना चांदी से, ना पीतल से, ना तांबे से, ना हीरे की कनी बनाया, ना डायमंड, ना क्रिस्टल डॉल। बनाया किससे? कीचड़, गारा, खरावत और अकड़ को देखे हमारी। कभी बड़ा ही अकड़ के अल्लाह की नाफरमानी के गटअप में बाहर जाने को दिल चाहे ना, तो इन आयतों को याद कीजिएगा। फरमाया, अब तो बहिश से निकल जा क्योंकि तू रांदा दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क्यामत के दिन तक। कहने लगा है, मेरे रब मुझे उस दिन तक ही ढील दे कि लोग दोबारा खड़े किए जाएं। फरमाया, अच्छा तू इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोज़े मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा, मेरे रब मुझे चूँकि तूने गुमराह किया, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में इनके लिए गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाऊंगा और इन सब को बहकाऊंगा भी, सिवाय तेरे इन बंदों के जो चुन लिए गए, मंतखब कर लिए गए। इरशाद हुआ है, हाँ यही मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा बना हुआ है। पहले तो दुआ करें अल्लाह में अपने मुखलस बंदे बना ले। सहाबा कराम कौन थे? अल्लाह के मुखलस थे। ये फ़र्क क्या है मुखलिस और लस का? सूरत स्वाद इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। या नोट कीजिए आयत 40-42 में सहाबा की खूबियाँ। खालिस इबादत करने वाले थे, अल्लाह के लिए सिर्फ अमल करते थे, शैतान के बहकावे में नहीं आते थे और नबी सल्लम के मुखलस साथी थे। अल्लाह हमारे अंदर भी ये खूबियाँ भर दे। हमने अपने लिए क्या अमल के नुक्ते लिए? अल्लाह के अजाब से डरना है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त पाने की जिद्दोजहद करनी है, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है ताकि जब मौत आए तो पाकीज़गी की हालत में आए, रसूल के पैगाम को मानना है, अल्लाह की खातिर हिजरत करनी है और तकलीफ़ों को सब्र से झीलना है। अल्लाह आपके मेरे लिए आसान करे। आगे बहुत प्यारा रुकू है आयत 45 से 60। मायूसी गुमराहों का काम है, यानी गुमराह नहीं होता मोमिन या मायूस नहीं होता मोमिन। इन्नल मुत्तकीन भी जन्नत व उयून, परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे। अल्लाह आप सबको उनमें कर दे। इनसे कहा जाएगा कि सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो सब भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहाँ इन्हें कोई तकलीफ छू सकती और ना वो वहाँ से कभी निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दीजिए कि मैं बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान हूँ। अल्लाह हमें भी बख्श दे, हम पे भी मेहरबानी कर दे। बार बार ये जुमले आते हैं आपके सामने और साथ ही मेरे अजाब भी नहायत दर्दनाक हैं, अल्लाह हमें अपने अजाबों से बचा ले। अब यहाँ अम्बिया के किस्से, इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का भी हाल सुना दो कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा, हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म वर्जन की खुशखबरी देते हैं। कहा, क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा, अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया, मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं मगर खानदाने लूत के, इन सब को हम ज़रूर बचा लेंगे सिवाय इस लूत की बीवी के, कि हमने इसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया। दोबारा वही किस्सा अपने नए रंग के साथ है। आयत 45 से 48 में सहाबा पर अल्लाह के इनामात नोट कर लेते हैं। पहली बात है, कीने और बहुत से उनके दिल पाक थे, अल्लाह हमारे भी करते। अल्लाह की अमान में थे, जन्नत और चश्मों में इनका ठिकाना होगा, अल्लाह के यहाँ हर तकलीफ से दूर होंगे, हमेशगी के इनामात को पाने वाले होंगे। अल्लाह हमें भी वही काम करने वाला बनाए जिससे हम भी ये नेमतें पाएँ। अमल के नुक्ते, परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, बुग़्ज़ नहीं रखना, सिर्फ़ अल्लाह से बख्शिश मांगनी है, अल्लाह क़ादरे मुतलक़ है इसका यकीन रखना है, मायूसी से बचना है और नेक गिरोह की सोहबत इख्तियार करनी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे जी रुकू नंबर 5, 61 से 79, अहले फरासत के लिए निशानी। فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ, جب بھیجے ہوئے فرشتے آلے لوت کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعنی لوت علیہ السلام نے کہا, تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو, پہچانا ہی نہیں. انہوں نے کہا, نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے. ہم تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا, اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے, اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام نے کہا, یہ میرے مہمان ہیں, اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے, کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا. لوط علیہ السلام نے کہا, کیا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں. تیری عمر کی قسم, وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. بس سورج نکلتے نکلتے انہیں بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانیاں ان پر؟ یہ ایک بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے, عام گزرگاہ ہے, اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ایکا بستی کے رہنے والے بھی ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام راہ پر تھے. کیا پتہ چلا کہ پچھلی قوموں کی وہ کہانیاں جو اللہ نے ادھر ہمیں دیں, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے پرومیننٹ پلیسز پہ رکھا تھا. کھاتے پیتے لوگ تھے, مشہور لوگ تھے, لیکن پکڑے گئے. تو آپ اور میں آج 61 سے 77 پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ قوم لوط کے کبھی رویوں سے آج کی نسل کو میں نے خبردار کر دیا, کیا قوم لوط کے ہولناک انجام سے میں نے آج کی نسل کو آگاہ کیا, اور کیا میری خواہشات مجھ پر زوراور ہوتی ہیں, اور کیا مجھے اس کا یقین ہے کہ نبی کی بیوی ہو کر بھی وہ عورت بچ نہ سکی جو اللہ کی نافرمانی کا شکار تھی, تو کیا میں آج بچ سکوں گی؟ اس لیے اپنے عمل کے چند رویے, اپنے گناہوں کی پکڑ سے ڈرنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر عاجزی اختیار کرنی ہے, اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنا ہے, اور اپنے اعضاء کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. آگے جی رکوع نمبر 6 80 سے 99, جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک میسج دیا, اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹو. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں, لیکن وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر, آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ دبوچا. بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا, یعنی مقصد دیا, اور قیامت ضرور بال ضرور آنے والی ہے. بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے, یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں, اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف مت دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو فائدہ دے رکھا ہے, نہ ان پر افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں. اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قسم ہے تیرے پالنے والے کی, ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر چیز کی جو وہ کرتے تھے. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. और अपने रब की इबादत करते रहें, हत्ता यातिया कल यकीन, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए, जो कि यकीनी है। कितनी खूबसूरत सूरत थी। मरते दम तक अल्लाह की रज़ा पे रहना है, तो आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते, दरगुजर करने वाला बनना है, मताए दुनिया से दिल नहीं लगाना, अदल पे कायम रहना है, और बेहयाई के कावों को नापसंद करना है, जुल्म और ज्यादती को रोकने वाला बनना है, और जब दुनिया वाले सताएं तो शिकायती रवैयों से ऊपर उठ के अल्लाह की हम्द और तस्बीह करनी है। अब नोट कीजिएगा, इस हिस्से में जितनी सूरतें आएंगी ना, ये मक्का के उस दौर की है जब जुल्म और सितम बहुत हो गया था। तो नबी को क्या कहा जाता, फसब्बिक बिहम्दि रब्बिक, जैसे बच्चा आता है रोता रोता, चोट लग गई है, रो रहा है रो रहा है, और आप उसको बहलाते हैं ना, अच्छा बेटा ये बताओ वो क्या है ये क्या है। तस्बीहात बंदे को ऐसे गाफिल कर देती हैं अपने हालात से, सारी शिकायतें भूल जाती हैं। और इन तस्बीहात के बारे में एक हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कलीमतानी खफीफतानी अलिसानी सकीलतानी फिल मीज़ान, दो कलमे जुबान पे हल्के मीज़ान में भारी, हबीबतानी इलर रहमानी, रहमान को बड़े महबूब हैं क्या, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह लज़ीम। ये सही मुस्लिम के अल्फाज है 6846। तो इन कलेमात को अपने लिए हिर्से जान बना लीजिए। सूरत हिजर का पैगाम क्या है, कुरान का एक एक लफ्ज़ महफूज है, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह की कुदरतों पे गौर करना है, यानी गौर व फिक्र करना है, पिछली कौमों की तबाही से इबरत पकड़नी है, ईमान एक कीमती सरमाया है, इसको बचा के रखना है, शैतान के बहकावे में नहीं आना, और मुखलस बनना है। अल्लाह आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको बाकियातुस सालेहात बना दे, और हम अपने लिए अमल के खुद गवाह बन जाएं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।